सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् जं जस्स जम्मि देशे जेन विहानेन जम्मि कालम् मे नादं जिणेन नियदम् जम्मं वाहवमरणं वा तं तस्स तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालं मे कोसकदिवारेदुं इन्दो वातः जिणिन्दो वा एवं जो निश्चयदो नदिदौ वाणि सौपजाये सो सदिठि सुतो जो संकदिसो कुदिठि। जिन आगम के आधार से हम कारण और कार्य संबंधी जो कुछ वस्तु व्यवस्था है उसका यहाँ स्वरूप देख रहे हैं। इस जीव की जो अनादि से जो मिथ्या ज्ञान है उसमें उसकी तीन प्रकार की विपरीतता चल रही है। कौन कौन सी पता है? हाँ, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। तो ये कारण विपरीतता क्यों चल रही है? कार्य का सच्चा कारण कौन है इस बात से जो अनभिज्ञ है और अपने मति कल्पना से कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि निमित्त से कार्य होता हुआ भासित होता है और यह जीव उसी को सच्चा कारण मानता है। तो जब किसी परवस्तु का इसने अपने कार्य का कर्ता मान लिया है तो निश्चित ही ये परवस्तु कब आएगी, मेरा कार्य कब करेगी, ऐसी उसकी पराधीनता पड़ी रहती है। परंतु हमने कारकों के माध्यम से भी ये देखा है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं स्वाधीन पने से अपने अपने कार्य का यानी पर्याय का कर्ता होता है। वस्तु में ही उसके षट कारक लगते हैं, देखा था हमने, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक एक ही वस्तु में लगते हैं। या पर्याय पर घटित करना है तो पर्याय पर लगाते हम छह कारक। उसके बाद अभी यहाँ चर्चा चल रही है अपनी पांच समवाय संबंधी। कार्य होता है प्रत्येक समय में, तो कार्य के होने में अनेक कारण स्वयमेव आ मिलते हैं। स्वयमेव आ मिलते हैं इसमें क्या नक्की होता है कि ये सारी सहज प्रक्रिया है। कारणों को इकट्ठा किया इसलिए कार्य हुआ ऐसी बात नहीं है। जो कार्य है उसके कारण भी निश्चित है और वो स्व समय पर वहाँ हाजिर होते ही होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे ये कौन कौन से पांच समवाय है उसकी बात यहाँ चल रही थी। कौन बताएगा पांच समवायों के नाम? हाँ हाँ, एक कोई, हाँ बोलो। हाँ हाँ, बराबर। ये जो पांच नाम हमने देखे हैं उसका ऑर्डर ऐसे भी कह सकते हैं आप, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। क्योंकि निमित्त को हम पर कहेंगे तो उसको लास्ट में रखेंगे, या स्वभाव निमित्त इस तरह से भी बात करते हैं। पांचों एक साथ विद्यमान है और पांचों ही से कार्य होता है। सर्वथा किसी एक कारण को ही कार्य का कर्ता मानना, कारण मानना, यह एकांतवाद मिथ्या मान्यता है। और सभी कारणों को मिलकर कार्य होता है, कथन किसी एक की मुख्यता से हो सकता है। कथन में मुख्य कौन हो सकता है, पर कार्य के होने में सभी कारण वहां उपस्थित होते ही है। स्वभाव की हमने चर्चा की थी, स्वभाव के हमने कुछ बिंदु देखे थे, कौन कौन से? हाँ, स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत है, असहाय है, अमर्यादित है, परिपूर्ण रह गए ना, परिपूर्ण है। हाँ, तो मैंने पंचाध्यायी का 8 नंबर का श्लोक देखने को बोला था, किसने किसने देखा है। हाँ, दो तो है तो सबके रिप्रेजेंटेटिव तरीके उन्होंने दोनों देख लिया है। बोलो। स्वसहायम, बहुत अच्छा, बैठ बैठ। देखो यहाँ द्रव्य को तत्व कहा है, तत्वम सल्लाक्षणिकम, सत उसका लक्षण है, सन्मात्रम वा यतः स्वतः सिद्धम, सन्मात्र सत्मात्र जो सत जो है वो स्वतः सिद्ध होता है, द्रव्य स्वत सत है तो वो स्वतः सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है। हमने सुबह देखा था कि स्वभाव के लिए कारण नहीं होते, स्वभाव को त्रिकाली उपादान कारण कहा है, स्वभाव जो है वो अपने कार्य का कारण है, कौन से पर्याय का कारण कहा, स्वभाव को कारण कहा है, परंतु स्वभाव के लिए अन्य कारणों की कोई जरूरत ही नहीं, वो होते ही नहीं, क्यों नहीं होते, कार्य में कारण होते हैं, स्वभाव में कारण नहीं होते। स्वभाव तो है, यदि कुछ नया उत्पन्न होता तो उसमें हम कारणों की चर्चा करते, स्वभाव तो कब से है, अनादि से ही है और अनंत काल तक पाया जाएगा। नया उत्पन्न होता है उसको हम कार्य कहते हैं, हम जब कहते हैं कि हमें धर्म प्रकट करना है, और कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं वस्तु स्वभाव धम्मो, तो वस्तु को वस्तु का जो स्वभाव रूप जो धर्म है क्या उसको उत्पन्न करना है, नहीं, वो तो अनादि से, और हम जो पर्याय में प्रकट करना चाहते हैं वो पर्याय है, वीतरागी पर्याय है, उसको प्रकट करना, उसको हम कहेंगे हमें धर्म करना है, जो करना है वो कार्य होता है, और जो अनादि से है वो स्वभाव है। तो यहाँ हम स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, पंचाध्यायी में ये जो लिखा है तत्वम, यानी वहां द्रव्य के लिए तत्व शब्द आया है, उसका लक्षण सत है, और जो सत मात्र वस्तु होती है वो स्वतः सिद्ध होने के कारण, यतः स्वतः सिद्धम, स्वतः सिद्ध होने के कारण वो है, इसलिए कैसी है, अनादि निधन है, अनादि अनंत टिकने वाली है। स्वसहायम, जिसको हमने असहाय कहा, स्वसहाय कहो या असहाय कहो एक ही बात है, जिसे अन्य किसी सहाय की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको कहेंगे यहाँ स्वसहाय या असहाय। और कैसा कहा उसको, निर्विकल्प, निर्विकल्प का अर्थ क्या होता है, हाँ बोलो, विकल्प रहित, परंतु कौन सा विकल्प, हाँ राग द्वेष रहित है ना, हाँ, यानी तत्व यानी द्रव्य, छह द्रव्यों की बात चल रही है यहाँ, तो पुद्गल द्रव्य राग द्वेष रहित है, आकाश द्रव्य राग द्वेष रहित है, धर्म द्रव्य राग द्वेष रहित है, ऐसा अर्थ है ना, तो यहाँ निर्विकल्प कहा, विकल्प शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, विकल्प का दूसरा अर्थ बताओ, भेद, हाँ, तो वस्तु तत्व जहां कहा है, द्रव्य कैसा है, अभेद है, इसलिए उसको निर्विकल्प कहा। ये निर्विकल्प ज्ञान की या निर्विकल्प अनुभूति की बात नहीं है, छह द्रव्यों पर ये बात घटित कर रहे हैं, तो स्वभाव कैसा है, स्वभाव यानी वस्तु कैसी है, यहाँ द्रव्य की बात चल रही है, द्रव्य कैसा है तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प यानी अभेद है, यानी अखंड एक वस्तु है, भेद का तो उपचार किया जाता है। तो ये जो हमने पंचाध्यायी में देख रहे हैं उसमें निर्विकल्प का अर्थ होता है भेद रहित अखंड। यहाँ सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण बताया है, द्रव्यों का लक्षण बताया, हम तो स्वभाव की बात कर रहे थे, फिर भी यहाँ द्रव्य जो है अनादि अनंत अपने स्वभाव या विभाव रूप परिणमने की योग्यता वाला है, वो स्वभाव उसके अंदर पड़ा है। क्या कहा, द्रव्य में स्वभाव रूप परिणमन करने का भी स्वभाव पड़ा है और विभाव रूप परिणमन करने का भी स्वभाव द्रव्य में पड़ा है, द्रव्य की बात चल रही है, वो भगवान आत्मा की बात नहीं यहाँ पर, समय सार में जिसको हम त्रिकाली भगवान आत्मा कहते हैं और विभाव से रहित सिद्ध करते हैं उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ सभी द्रव्यों का सामान्य वर्णन चल रहा है, तो उसमें स्वभाव रूप परिणमन हो या विभाव रूप परिणमन हो, उस रूप परिणमने की अपनी योग्यता रूप जो स्वभाव है वो द्रव्य में अनादि अनंत पड़ा है। ये स्वभाव की चर्चा तो हमें खूब की, तो ये जो स्वभाव है उसका, तो उसमें त्रिकाली स्वभाव भी है और तत्समय की पर्याय रूप योग्यता जो है क्षणिक उपादान, वो स्वभाव भी द्रव्य में ही पड़ा है। तो जब हम कारणों की चर्चा करते हैं तो इसमें स्वभाव रूप कारण है, उसमें तो उपादान कारण आ गया। अब आगे देखते हैं निमित्त। निमित्त और उपादान तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में भी हमने बहुत लंबी चर्चा की थी। यहां देखते हैं 110 पृष्ठ पर, ये निमित्त में दूसरी लाइन। जब कार्य होता है तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमित हो रहा है, कब? प्रति समय। तो किसी, हम मानते कोई ए नाम का द्रव्य है, उसकी पर्याय हो रही है अपने स्वयं के कारण ए द्रव्य में, उसी समय अन्य अनंत द्रव्य परिणमित हो रहे हैं, परंतु कोई अन्य बी नाम का द्रव्य है उसका परिणमन क्या भासित होता है हमें? ये ए वाले परिणमन में अनुकूल होने का आरोप उस बी द्रव्य के परिणमन पर आता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? निमित्त। परंतु वो जो बी नाम का द्रव्य है वो स्वयं अपना कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि केवल ये ए द्रव्य को निमित्त होने का ही कार्य है उसका? उसका अपना भी कुछ कार्य होता होगा कि निमित्तपने बना रहने का ही उसका कार्य है? आकाश द्रव्य का गुण कौन सा है? तो उतना ही उसको कार्य होगा ना, दूसरे को अवगाह ना देना, कि उसका अपना भी कुछ उपादान कार्य चल रहा है। हाँ, उसमें तो अनंत गुण है, उसका भी अपना कार्य चल रहा है, परंतु हम अपनी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। यहाँ जो धर्म अधर्म आकाश काल को बताया जाता है वो हमें कैसे किस रूप से निमित्त है इसकी चर्चा है, परंतु उन द्रव्यों में अपने अपने अनंत गुण भी है और उनका भी वहाँ अपना अपना परिणमन भी हो रहा है। उसमें अन्य गुण है कि नहीं है? कि एक अवगाहना देना इतना ही गुण है, अनंत गुण है। क्यों? प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं कि अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता है, परंतु जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, कार्य रूप यानी अन्य द्रव्य के कार्य रूप, अपने स्वयं के कार्य रूप परिणमन कर रहा है, अपने कार्य का वो उपादान कारण है। नहीं समझे? हमने दो द्रव्य देखे, ए द्रव्य अपने कार्य का उपादान कारण है, बी द्रव्य अपने कार्य का उपादान कारण है, परंतु जो बी द्रव्य है वो ए द्रव्य में हम कहेंगे उसका निमित्त है, परंतु वो बी द्रव्य है ए द्रव्य के कार्य का उपादान कारण नहीं हो सकता, सच्चा कारण नहीं हो सकता। ए और बी मिलकर ए का कार्य करेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वयं का ही कार्य करता है, इसे कहते जो निमित्त है वो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता। निमित्त कार्य में कुछ भी फेरबदल, मदद, सहाय नहीं करता, फिर भी निमित्त की उपस्थिति अनिवार्यपने से होती है, यानी वो उपस्थित होता ही है। पांच समवाय में एक निमित्त नाम का समवाय भी है। निमित्त को सर्वथा मानेंगे ही नहीं, वो होता ही नहीं कहेंगे, तो उसके पर्याय संबंधी उसकी मान्यता भी खोटी हो जाएगी, ज्ञान भी खोटा हो जाएगा, उसको एकांतवाद का प्रसंग आएगा। निमित्त होता है तो ज्ञान भी उसका किया जाता है, परंतु वो कार्य में कुछ फेरबदल करे, असर करे, कुछ उसमें उसके कारण कुछ चेंज हो जाए, कार्य कुछ अन्य होना था और निमित्त आया इसलिए कुछ अन्य हो गया, ऐसा होगा कि नहीं होगा? निमित्त के कारण कुछ कार्य में, होने वाले कार्य में कोई परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता है। होने ही वाला कार्य होता ही है और वहां निमित्त अपने स्वयं की योग्यता से सहज वहां उपस्थित रहता है। जो निमित्त को मानेगा ही नहीं, उसने पांच समवाय में से एक कारण को, यानी निमित्त नाम के समवाय कारण को नहीं माना, यह उसकी मान्यता खोटी है। हम कहेंगे नहीं निमित्त को माना ही नहीं, उस निमित्त होता ही नहीं, निमित्त खुद नहीं जानते। जब निमित्त का निषेध, लोगों को क्या लगता है? ये निमित्त का निषेध कर रहे, निषेध किसका हो रहा है? निमित्त से कार्य में कुछ हेर फेर होने की जो मान्यता है, या निमित्त आकर कार्य करता है ऐसी जो मान्यता है, उस मान्यता का निषेध हो रहा है, निमित्त का नहीं। जब मिट्टी स्वयं उपादान से घड़ा रूप परिणमन करती है, तब कुम्हार, चाक, दंड आदि निमित्त भी उपस्थित रहते ही है। क्या कहा? उपस्थित रहते हैं। कुम्हार कहता है, मैंने दंड लाया, चाक लाया, उसको बराबर हिलाया, तभी तो हो गया कि नहीं कार्य? तो कहते हैं, नहीं, ये सारे निमित्त स्वयं अपने से वहां उपस्थित है। क्योंकि जो कोई दंड है, कोई चाक है, जो कोई दोरी है, ये जो पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य कब से है? अनादि से। अनादि से वो चाक रूप अवस्था में होगा कि नहीं? चक्र रूप। वो अपनी अवस्था करते 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 वर्तमान में वो चक्र रूप अवस्था में विद्यमान है। वो चक्र भी पड़ा था दीवार के सहारे उसको, तभी तो कुछ घड़ा बनाने के लिए निमित्त नहीं कह रहे थे। जब वो कीली पर रखा और वो घूम रहा है, तब हम उसको कहेंगे ये निमित्त है। तो कुमार ने घुमाया, तभी वो घुमा कि नहीं? हाँ, तो वो स्वयं अपनी योग्यता से उसी समय घूम रहा है। और कुम्हार के जो कोई शरीर की अवस्था है, उसका जो हाथ की वगैरह क्रिया हो रही, वो उसके उस पुद्गल में अपनी स्वयं की योग्यता से हुए। प्रत्येक कार्य अपने स्वयं की योग्यता से होते हुए फिर ख्याल में आएगा अपने। जब सम्यक दर्शन रूप कार्य होता है, अर्थात जीव द्रव्य या जीव का श्रद्धा गुण स्वयं की योग्यता से सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होता है। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? जीव स्वयं अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन रूप पर्याय रूप से परिणमित हुआ निश्चित समय पर। समय कहते तो हम घड़ी देखते हैं कितने समय पर, ऐसा नहीं है। वो जो काल की, जो काल यानी वहां पर्यायों के जो प्रवाह है, उसमें निश्चित समय पर अपने स्व समय पर वो प्रकट होता है। तब दर्शन मोहनीय कर्म की उपशमादि अवस्था पाई जाती है, जो अंतरंग निमित्त है। पहले हमने अंतरंग निमित्त की परिभाषा देखी थी, याद है? पीछे ब्लैक शर्ट। अंतरंग निमित्त किसे कहना? याद नहीं, किसको याद है? बाकी सब लोग भूल गए। हाँ बोलो, अंतरंग निमित्त किसको कहना? आपके बाजू वाला। हाँ 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 हाँ, जो नियम रूप निमित्त पाया जाता है। नियम रूप क्यों? जो जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उन सभी में एक निमित्त तो निश्चित होता ही है। कौन सा? हाँ, कर्मों का उपशम। जो दर्शन मोहनीय कर्म है, मिथ्यात्व कर्म का पहले उदय चल रहा था, अभी उसका उपशम हो गया, तो हम कहेंगे ये प्रथम उपशम सम्यक तो जिसने पाया है, उसमें तो दर्शन मोहनीय का उपशम पाया जाएगा ही। इसको कहेंगे नियम रूप निमित्त, अंतरंग निमित्त। और बहिरंग निमित्त किसको कहेंगे? हाँ, अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य निमित्त हो गए। किसी को किसी के उपदेश सुनकर होगा, किसी को भगवान की प्रतिमा देखकर होगा, यानी वो प्रतिमा देखते देखते नहीं, वहां से उपयोग छूटकर अपने आत्मा को पकड़ लेता है, तो उसको अन्य अन्य बहिरंग निमित्त होते हैं। नारकियों में तो इतनी तीव्र वेदनाएं, जीव ऐसा विचार करता है, ऐसा क्यों? और फिर उसी तत्व के विचार में चढ़ जाता है। ऐसे अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य जो निमित्त होते हैं, उसको क्या कहेंगे? बहिरंग निमित्त। इसकी भी अपनी चर्चा होगी, अंतरंग और बहिरंग की। अंदर में है वह अंतरंग, ऐसा अर्थ नहीं है। नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले किसी भी जीव में यह होगा ही। उसमें बहिरंग निमित्त अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य हो सकते हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र, आत्मानुभवी ज्ञानी द्वारा देशना की प्राप्ति, उपदेश की प्राप्ति बाह्य निमित्त है। यह भी बहुत पहले वाला निमित्त बताया है। समय दर्शन की प्राप्ति तो करण लब्धि के पश्चात होती है, और ये देशना या अन्य जो निमित्त बताया है, वो तो देशना लब्धि में निमित्त होते हैं, पूर्व अवस्था में होते हैं। फिर भी उसके बिना कार्य आगे का नहीं होता, इसलिए उसी को निमित्त कह देते हैं। इसको बाह्य निमित्त कहा। उपदेश की प्राप्ति बाह्य निमित्त है। हो सकता है कि उसे देशना इस भव में या पूर्व भव में प्राप्त हुई हो। देखो हमने देखा था सम्यक दर्शन दो प्रकार के, कल बात आई थी ना, निसर्गज और अधिगमज। ये निसर्गज क्या होता है? हाँ, किसी के ज्ञानी के उपदेश के बिना जिसके हुआ उसको क्या कहेंगे? निसर्गज। और अधिगम, अधिगम यानी ज्ञान, तो उसको किसी का उपदेश मिला, ज्ञान मिला और बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ तो क्या कहेंगे? अधिगमज। परंतु जब हम निसर्गज भी कहते हैं तो पूर्व में किसी की देशना निश्चित रूप से उसको मिली हुई होनी चाहिए। सर्वथा निसर्गज होता ही नहीं, एक ज्ञानी के देशना उसके पूर्व भव में या उसके पूर्व भव में जरूर मिली हुई होती है। जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण, नरक की तीव्र वेदना, स्वर्ग का ऐश्वर्य आदि के निमित्त से जीव अंतर्मुख होकर विचार करने लगता है और स्वयं के शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन करके उसमें एकाग्र होते ही उसे शुद्धात्मानुभूति प्रकट होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। निमित्त प्रधान शैली में देशनारूप निमित्त को आत्मानुभूति रूप कार्य में अत्यंत महत्व का स्थान देकर हम आत्मज्ञानी व्यक्ति, गुरु और इस देशना का मूल स्रोत अरिहंत भगवान का उपकार स्मरण करते हैं। उपकार स्मरण करना कुछ निमित्त से कार्य होता है मानना नहीं है। हम जो भगवान की भक्ति करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि अन्य मति अपने भगवान की करते हैं, इसलिए हम अपने भगवान की करते हैं, ऐसा है। ये मोक्ष मार्ग जैसा उत्कृष्ट उपदेश जिन्होंने दिया है और जो आज तक हमें प्राप्त है, तो सहज रूप से ऐसे भाव आते हैं कि ऐसा अमूल्य उपदेश ये देने वाले जो भगवान है, तो उनके प्रति हमें, उनके प्रति, उनके उपदेश के प्रति, उनके वितरागता के प्रति हमें आदर बुद्धि जागृत होती है। पांच कारणों अर्थात पांच समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है, तब अन्य चार कारणों का भी क्या लिखा? गौण रूप से स्वीकार रहता ही है, क्योंकि हमने पांच समवायों को स्वीकार किया है। अब हम किसी एक का नाम लेके उसकी मुख्यता से, अभी हम निमित्त की बात यहां देख रहे हैं, तो निमित्त की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अन्य चार समवाय होते ही नहीं ऐसा माना कि हमने? नहीं, हमें स्वीकार है, क्योंकि एक समय में तो किसी एक वक्त में एक की चर्चा चलेगी। जैसे हमें चार बच्चे हैं हमारे और किसी ने पूछा इनके नाम बताओ, तो क्या करेंगे? एक के बाद एक नाम लेंगे ना, चार नाम एक साथ कैसे लेंगे? तो यहां किसी एक को मुख्य करके भी, अभी किसी की शादी है तो उसी को गाने गाएंगे उसके, तो क्या वो एकला अकेला ही लाडला है, बाकी कोई ऐसा है क्या? ऐसी नहीं बात। तो जिसको मुख्य किया जाता है वहां अन्य जो है उसका भी गौण रूप से स्वीकार होता है। अगर वो उसका स्वीकार नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे उसको? नए भी जो होते हैं निरपेक्ष नए, उसको क्या कहेंगे? मिथ्या कहेंगे। ऐसे यहाँ जब एक कारण की चर्चा करते हैं हम, अन्य भी कारणों का वहाँ गौण रूप से स्वीकार होता ही है। देखो पांच कारणों अर्थात पांच समवाय में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है, तब अन्य चार कारणों का भी गौण रूप से स्वीकार रहता ही है। परंतु इसे न मानकर सर्वथा एक ही कारण से कार्य होता है मानना मिथ्या एकांत है। इसे ही क्या कहते हैं? एकांतवाद। कोई मात्र निमित्त को ही कर्तापने से स्वीकार करते हैं और निमित्त न मिलने के कारण मेरा कार्य अटका हुआ है मानकर पराधीन दृष्टि वाले बनते हैं। अन्य कई लोग नियति यानी दैव पर सारा हवाला देकर एकांत नियतिवाद का पोषण करते हैं। अभी किसी एक का समवाय का नाम लेंगे और सर्वथा उसी से होता है ऐसा मानेंगे? काल ही सब कुछ करने वाला है ऐसा मानेंगे? काल लब्धि को ही मानेंगे सर्वथा? या कोई के जो होने वाला है वही होगा? वो तो कोई ईश्वर का नाम लेके बताते हैं, अरे ईश्वर के हाथ में, वो जो कुछ करेगा वो सब कुछ होता है। तो यहाँ तो होने वाला होता है परंतु उसमें पांचों समवाय लगते हैं। लोग कहते ना जब समय दर्शन होगा तब होगा, भगवान ने देखा है ना तब होने वाला है ना, तो अभी से क्यों चिंता करते हो? ऐसा कहते हैं ना, चिंता करने से मिलता है ना कुछ उसके बारे में दौड़ धूप करने से मिलता है, जब होना है तभी होता है, परंतु उसमें सब कुछ निश्चित है। अपना क्षणिक उपादान कारण भी निश्चित है, त्रिकाली उपादान तो हम है ही, पर अपना क्षणिक उपादान भी निश्चित है, उस समय का निमित्त भी निश्चित है, उस समय का पुरुषार्थ भी निश्चित है, काल लब्धि होनहार सब कुछ निश्चित है। पांचों ही कारण निश्चित होते हैं और वो स्व समय में स्वयं अपने कारण से हाजिर रहते हैं। अब हम काल लब्धि की चर्चा करेंगे थोड़ी। जब काल लब्धि कहते हैं तो ये व्यवहार काल की बात नहीं है। द्रव्य का जो अनादि अनंत पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है उसमें हर समय की जो योग्यता वाला धर्म है, प्रत्येक समय में निश्चित पर्याय होने वाली है और उसका होने का जो योग्यता रूप धर्म उस द्रव्य में ही विद्यमान है। ऐसे प्रत्येक समय का अपना अपना धर्म विद्यमान है, तो ये जो अनादि अनंत है उसी को कहेंगे हम द्रव्य का काल। द्रव्य का जो परिणमने का जो काल है अपना अपना, उसको हम द्रव्य का काल कहेंगे। जिसको हम द्रव्य का स्वकाल कितना है, द्रव्य का काल कितना है, अनादि अनंत। और पर्याय का काल उसका अपना स्वकाल, एक समय वाला, कोई भी एक समय नहीं, निश्चित एक समय। वो पर्याय के क्रम में कहाँ वो फिक्स है, वो तो निश्चित है, उसमें कोई नीचे ऊपर नहीं कर सकता। हाँ, तो काल लब्ध प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता, क्या कहे यहाँ, योग्यता। यहाँ पर्याय को काल लब्धि नहीं कहा, विशिष्ट कार्य होने का जो समय है, विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे काल लब्धि कहते हैं, इसे नियति भी कहते हैं। उपादान की चर्चा में हमने क्षणिक उपादान कारण को कार्य का नियामक कारण अर्थात कार्य कब होगा इसका नियामक कारण कहा। ये क्षणिक उपादान में हमने कौन से दो देखे थे, हाँ, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय रूप क्षणिक उपादान और दूसरा, हाँ, तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान, तो इसको नियामक कारण कहा था। हमें नियामक कौन लगता था अभी तक, निमित्त, क्योंकि निमित्त भी उसी समय है ना, जिस समय क्षणिक उपादान है उसी समय में बाह्य वस्तु जो है उसको हम निमित्त कहते हैं। ये वस्तु के अंदर की शक्ति तो दिखाई नहीं देती है, दिखाई कौन देता है, निमित्त। तो क्या लगता है, निमित्त से कार्य हुआ। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत रहता है और उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है। हम एक द्रव्य की एक समय में एक पर्याय मान लेते हैं तो कितनी पर्याय होगी द्रव्य में, नहीं समझे। वर्तमान में हम द्रव्य की एक पर्याय है ऐसा समझेंगे, प्रत्येक गुण की एक है उसको भी हम भूल जाओ, द्रव्य की एक समय में एक पर्याय होती है ऐसा हम समझेंगे, तो द्रव्य में टोटल पर्याय कितनी होगी, हाँ, जितने तीन काल की समय, यानी द्रव्य कितना लंबा है पूछेंगे, द्रव्य कितना चौड़ा है पूछेंगे तो हम उसके प्रदेश कहेंगे। जैसे जीव कितना चौड़ा है, असंख्यात प्रदेश, और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, और परमाणु एक प्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी। तो कोई द्रव्य एक प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, और सभी की लंबाई कितनी है, समान है कि असमान है, समान है। तो जो फैले हुए हैं ना ऊर्ध्व, जिसको प्रचय कहते हैं, अनादि से अनंत काल तक फैले हैं, कितने फैले हैं, जितने तीन काल के समय है, वो कभी खूटने वाले नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य की जो चौड़ाई, प्रदेशों का विस्तार है, प्रदेशों का विस्तार तो कम ज्यादा है, परंतु जो काल का विस्तार है अनादि अनंत, वो सबके लिए समान है। प्रत्येक द्रव्य के अपने समय पर एक एक पर्याय सुनिश्चित है। तो ये जितने तीन काल के समय है उतने ही उसमें पर्याय है। नीचे के दो लाइन, कार्य होने की योग्यता यानी तत्समय की पर्याय की योग्यता को ही काल कहते हैं। किसका काल, ये द्रव्य का काल अनादि अनंत और पर्याय का काल अपना अपना एक समय। द्रव्य का स्वकाल अनादि अनंत है तो पर्याय का स्वकाल एक समय का है। केवल इतना ही नहीं, वह समय निश्चित है, ये बात महत्व की है। द्रव्य कितना है? अनादि अनंत। और पर्याय कितनी है? एक समय, कोई भी एक समय नहीं, अपना स्व समय पर वो निश्चित समय पर वहां होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में प्रत्येक पर्याय निश्चित है, स्व समय में निबद्ध है। यदि वो स्व समय में निबद्ध नहीं होती है तो केवल ज्ञानी कैसे जानते कि इसके ये क्रम है पर्यायों का और निश्चित समय पर ये निश्चित पर्याय रूप से परिणमने वाला है? क्योंकि उन्होंने द्रव्य को अनादि अनंत देखा है। एट अ टाइम सभी द्रव्यों को अनादि अनंत सभी पर्यायों के पिंड रूप उन्होंने द्रव्य को देखा है। काल लब्धि के आधार से हम अन्य कारणों की निश्चितता सिद्ध कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जैसे काल लब्धि के आधार से क्या हम कह रहे हैं? पर्याय अपने स्व समय पर निश्चित है। अब निमित्त नाम का जो कोई परद्रव्य है उसकी अपनी पर्याय भी स्व समय में निश्चित होगी कि नहीं होगी? क्यों? वो भी अपने समय पर निश्चित है, अपने उपादान से अपने समय पर। यानी इसका अर्थ क्या है? जैसे क्षणिक उपादान पर्याय का अपना स्व समय है, उसी समय निमित्त भी अपने स्वयं के कारण अपने उसी समय में हाजिर है, यानी निमित्त भी निश्चित है। अभी हमने देखी नहीं है, परंतु जो होने वाली पर्याय भी निश्चित है, जिसको हम होनहार कहेंगे। पुरुषार्थ नाम की जो पर्याय हो रही है वहां पर, वो भी निश्चित होगी कि नहीं होगी? पांचों समवाय निश्चित हो गए और उसी समय हो गए। काल लब्धि के द्वारा हम पांचों समवाय का सुनिश्चित कर सकते हैं, उनका समय वही होगा जिस समय कार्य हो रहा है। देखो, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में ही उत्पन्न होती है, इसे भी हमने देखा। इसका तात्पर्य यह हुआ, विशिष्ट समय का यानी विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, आगे पीछे कर नहीं सकता। अब बात आई पुरुषार्थ की, क्योंकि सभी लोगों के प्रश्न जो है पुरुषार्थ संबंध में ही होते हैं। सब कुछ निश्चित है तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? हमारे हाथ में कुछ बातें नहीं रही, सब कुछ निश्चित है ना? करने धरने का कुछ कार्य रहा ही नहीं हमारे हाथ में, हम पराधीन हो गए। हमारा अहम भाव को, हमारे कर्तृत्व भाव को चोट पहुंचती है। तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? वो किस गुण की पर्याय है और कौन से द्रव्य के कौन से गुण की पर्याय है? कौन बताना चाहता है? बोलो, पुरुषार्थ कौन से? वीर्य गुण की। कौन से द्रव्य के? जीव द्रव्य के। जीव द्रव्य के ना, हाँ जीव के। पांच समवाय कौन से द्रव्य में लगते हैं? पांच समवाय प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक पर्याय में लगते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य के, आज हम पुद्गल की बात करेंगे, ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें उसके पुरुषार्थ लगेगा कि नहीं उसके पर्याय में? क्यों, आप क्या कहते हैं? पांच समवाय होते हैं ना, तो पुरुषार्थ पुद्गल द्रव्य की पर्याय में जीव का पुरुषार्थ लगेगा कि पुद्गल का? पुद्गल का। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पुरुषार्थ होगा। तो हाँ, हम तो पहले ऐसे सीखे थे कि जीव द्रव्य में वीर्य गुण है, उसका वो विशेष गुण है। परंतु जब हम समवाय की अपेक्षा से देखेंगे तो क्या होता है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने पर्याय की रचना स्वयं करता है, और पर्याय की रचना करने में उसका अपना पुरुषार्थ, अपना बल लगता है। द्रव्य स्वयं अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से पर्याय की रचना कर रहा है, इसलिए प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ नाम का समवाय बताया है। देखो, पुरुषार्थ शब्द का लौकिक अर्थ करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ, यानी इन विशिष्ट कार्य के लिए जीव के प्रयत्न, इस तरह हम इसका अर्थ करते हैं। लौकिक में कहते हैं ना, चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कौन से? धर्म पुरुषार्थ यानी वो शुभ भाव करना, अर्थ पुरुषार्थ पैसा कमाना, काम पुरुषार्थ वो काम की बातें है, और मोक्ष पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए कुछ प्रयत्न करना। और जीव के गुण पढ़ते समय हमने उसको वीर्य गुण की बात की थी। नीचे देखते, देखो, स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। कौन से स्वभाव की रचना? जब हम मोक्ष पुरुषार्थ की बात करेंगे ना, तो स्वभाव, स्वभाव विभाव में से स्वभाव की बात करेंगे। परंतु यहाँ तो हर पर्याय में हम पांच समवाय घटित कर रहे हैं, तो जीव मिथ्या तो रूप परिणम करता है, तो वहां पुरुषार्थ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों बेन? जीव मिथ्या तो रूप परिणम कर रहा है, उसमें उसका पुरुषार्थ है कि नहीं है? है ना? हाँ, मोक्ष के लिए हम सीधा पुरुषार्थ कहेंगे, परंतु उस पर्याय के योग्य पुरुषार्थ वहां चल रहा है। कोई नरक में जाता है, अपने पुरुषार्थ जाता है, कर्म उसको ले जाता है अपने पुरुषार्थ, यानी उसकी वहां वैसी योग्यता, वैसा वो पर्याय की जो रचना है वो उसके स्वयं से होती है। तो छह द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभावानुसार होता रहता है। अभी अभी हमने देखा त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान दोनों ही द्रव्य में विद्यमान है, उसी को हमने स्वभाव कहा, और प्रत्येक पर्याय अपने स्वभाव के अनुसार होती है। सुबह हमने देखा था कोई भी कार्य, कोई भी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती है। यह भी क्या है, कौन सा स्वभाव है? त्रिकाली उपादान है ही है, क्षणिक उपादान, दोनों को मिलकर लेना है, उसके अनुसार ही पर्याय होगी। तो कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वभाव अनुसार होती है, इसलिए सभी चहों द्रव्यों में वीर्य गुण है और उसकी पुरुषार्थ रूप पर्याय हर समय होती है। हर समय क्यों होती है? कार्य प्रत्येक समय में होता है। यहां जिस पुरुषार्थ की बात हो रही है, जो होने योग्य पर्याय है वैसा उस पर्याय के योग्य पुरुषार्थ वहां होता रहता है, क्योंकि तत्समय की पर्याय रूप योग्यता वाला धर्म वहां द्रव्य में पड़ा है, तो उस द्रव्य का पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा जैसे होने योग्य पर्याय है। जिस समय सम्यक दर्शन होना है उस समय का पुरुषार्थ वैसा ही होगा सम्यक दर्शन के योग्य, जिस समय पूर्ण वितरागता होनी है, जिस समय केवल ज्ञान होना है, सब पर प्रत्येक पर्याय पर घटित करना। जब हम पर्याय पर घटित करना चाहते हैं, पहले में पहले याद किसकी आती है? तो विभाव भी अपने पुरुषार्थ से होता है, वो भी स्व समय पर होता है, ऐसा कहते हैं ना, यानी हमें चिंता किसकी है? अपने विभाव कहीं छूट नहीं जाए, क्योंकि विभाव की पता है ना, विभाव भी होते तो हम क्या करें। विभाव भी अपने समय पर निश्चित पुरुषार्थ से होते हैं, तो होने दो ना, हम क्या करें, हम क्यों चिंता करें? तो सचमुच निश्चिंत हो गए क्या नहीं हो गए, इसका विचार करेंगे हम। देखो आगे, वह पुरुषार्थ तो छह द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में कारण रूप से विद्यमान रहता है, क्योंकि पर्याय की रचना द्रव्य स्वयं करता है ना, यही उसका पुरुषार्थ है। कहीं कहीं वह पूर्व पर्याय के व्यय रूप कारण को भी पुरुषार्थ कहने में आता है, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और नई पर्याय की उत्पत्ति हुई, इसको पुरुषार्थ कहेंगे। वहां तो पुरुषार्थ तो पूर्व पूर्व पर्यायों का जो सिलसिला चला आ रहा है, मान लेते हम 101 से शुरू करते, 101 पर्याय का व्यय हुआ, 102 उत्पन्न हुई, 2 का व्यय हुआ, 3 हुई, 3 का व्यय हुआ, 4 हुई, 4 का व्यय हुआ, 5वीं हुई। तो इस तरह से जो पूर्व पूर्व पर्याय, निश्चित पूर्व पर्याय का व्यय होकर ये आगे आगे की पर्याय, ये जो उसकी अखंड श्रृंखला है, सिलसिला है, उसको भी कहीं कहीं पुरुषार्थ कहेंगे, विधि कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे। परंतु हमें एक ही समय पर घटित करना है ना, तो एक समय में जो द्रव्य अपने पर्याय का जो रचना करता है वहां, तो उसको यहाँ पुरुषार्थ कहने में आता है। उस दिन गोष्ठी में भी आपने जो सम्यक दर्शन यानी प्रथमोपशम सम्यक तो के पूर्व होने वाली पर्यायों का क्रम बताया था, शिक्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। करण लब्धि में भी तीन करण परिणाम अलग अलग है, क्रम पूर्वक उनके सब होते ही हैं। ये परिणामों का जैसा क्रम है और उस क्रम पूर्वक ही सम्यक दर्शन की पर्याय हो गई। प्रथमोपशम सम्यक तो के पहले होने वाली ये सारे पर्यायों का क्रम है, तो ये क्रम भी निश्चित है और उसी क्रम से आगे सम्यक दर्शन होगा। किसी ने बताया इस विशिष्ट समय में 9 बजे सम्यक दर्शन होगा, तो उसके पूर्व पश्चात पर्याय निश्चित है कि नहीं है? 9 बजे होगा ना, तो चलो अभी हम थोड़ा एक कद सिनेमा देख कर आते, पिक्चर देख कर आते, चलो जरा होटल में जाके घूम के आते, ये बातें नहीं होगी। जिस समय जो कार्य होना है वो तो निश्चित है ही, उसकी पूर्व पर्याय भी निश्चित होती है। देखो 113 प्रश्न पर आते हैं, सम्यक दर्शन के पूर्व में किए गए इन सभी प्रयत्नों को यानी पर्यायों को हम पुरुषार्थ कहते हैं। और मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए इसी का उपदेश दिया जाता है। देखो ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, सब कुछ निश्चित है तो उपदेश क्यों दे रहे हो? क्या पूछते हैं? सब कुछ निश्चित है ना, हमारे से होने वाला है, प्रत्येक द्रव्य का सुनिश्चित है, तो उपदेश क्यों दे रहे हो? वो भी निश्चित है। अच्छा, पर हमने माना नहीं ना, उपदेश भी निश्चित है। किस द्रव्य में निश्चित है उपदेश? किस द्रव्य में निश्चित है? जीव में। उपदेश रूप जो भाषा है वो किस द्रव्य में निश्चित है? पुद्गल द्रव्य में। भाषा वर्गणा उस रूप परिणमित होती है, तो यही जीव उपदेश दे रहा है। हाँ, उसके संयोग में होगी वो, तो वो सब कुछ जो निश्चित है, परंतु जो दूसरे को उपदेश दिया जाता है, जो चरणानुयोग की भाषा होती है, वहाँ ऐसा करो वैसा करो ये करना चाहिए, वहाँ फिर कहेंगे ये मनुष्य भोग इतना अमूल्य है, ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलता है, शास्त्राभ्यास की मुख्यता तो मनुष्य में ही होती है, और फिर हम जीवन कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या उस समय वो निश्चितता नहीं है पर्याय उनकी? होती है। परंतु जब किसी को उपदेश देना होता है तो ऐसा करो वैसा करो ये करना चाहिए की भाषा होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी दो प्रकार की दवाइयाँ देता है, एक अंदर पेट में लेने की और एक ऊपर लगाने की। उल्टा करेंगे तो वहां तो बराबर विवेक रखते हैं, अंदर क्या लेना और ऊपर क्या, क्यों? और यहाँ तो उल्टा पुल्टा सब कर देते हैं। जब उपदेश देते तो कहेंगे सब कुछ निश्चित है तो क्यों बता रहे हैं, और जब सिद्धांत बताए जाते हैं तो जब होना है तब होना, हम अभी क्यों हमारा माथा खा रहे हैं, अभी क्यों उपदेश है? प्रत्येक समय की पर्याय में पुरुषार्थ नामक कारण उपस्थित रहता ही है। कब रहता है? प्रत्येक पर्याय में। पांचों कारणों का समवाय होता है, समवाय ने समूह होता है, इकट्ठा आ मिलते हैं, कोई जुटाने से नहीं आते और ना हटाने से हट सकते। इस बात को तो हम पहले देख चुके हैं। अब ये पांचवा कारण है समवाय का, क्या नाम है? भवितव्य। इसका अर्थ है होने योग्य, भवितव्य। वस्तु में जिस समय जो कार्य होने योग्य है वही होता है, अन्य नहीं। दोनों ओर से नक्की करना है, होने योग्य वही होता है, अन्य नहीं होता, उसको भवितव्य या होनहार कहते हैं। पहले हमने काल लब्धि में क्या देखा था? जिस समय होना है उस समय, वो समय निश्चित है। अब कहना समय तो निश्चित है ही, उस समय जो कार्य होना है वह भी निश्चित है, यानी समय भी निश्चित है और उसका कार्य भी निश्चित है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कोई अन्य कार्य को लाके वहां फिट कर दे। अभी अभी काल लब्धि की चर्चा में हमने देखा था कि काल अर्थात प्रत्येक पर्याय का समय, यानी प्रत्येक समय की पर्याय की योग्यता निश्चित है, और यहाँ भवितव्य में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है, प्रत्येक पर्याय निश्चित है, प्रत्येक समय में होने योग्य पर्याय ही होती है, अन्य नहीं। क्या कहा? जो होने योग्य है, जो निश्चित है, वही होती है, अपने स्व समय पर होती है, यानी काल लब्धि भी निश्चित है और उसका होनहार भी निश्चित है। तो जैसी काल लब्धि और होनहार है वैसा ही पुरुषार्थ होगा उस समय, क्यों? वैसा क्षणिक उपादान वो स्वभाव में पड़ा है, और ये सब तो मिल गया और निमित्त नहीं आया तो बैठे रहो। हाँ, कहाँ? मंदिर में के घर में? ऐसा होता ही नहीं। पांचों ही समवाय सुनिश्चित, जो होने योग्य पर्याय है उसके अनुकूल वहां होते ही होते हैं। देखो, हम किसी वस्तु की यानी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नाप कर उस वस्तु का विस्तार कितना है देखते हैं। जिनेंद्र भगवान अपने दिव्य केवल ज्ञान द्वारा वस्तु यानी द्रव्य कितने प्रदेशीय है इसको तो जानते ही है, साथ साथ उस द्रव्य का अनादि अनंत पर्याय क्रम भी जानते हैं। काल की अपेक्षा द्रव्य अनादि अनंत फैला हुआ है, उसका प्रवाह क्रम वे जानते हैं। द्रव्य के क्षेत्र अपेक्षा विस्तार को तिर्यक प्रचय कहते हैं। पहले हमने ये नाम देखा था, वो कितने प्रदेशी है, वो जो विस्तार है उसको क्या कहेंगे? तिर्यक प्रचय, और दूसरा का नाम क्या है, वो अनादि अनंत फैला है, उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्व प्रचय। प्रवचन सार में क्या कहा है इसको मालूम है? हाँ, ऊर्ध्व प्रचय को क्या कहा है, क्रम अनेकान, दूसरा आयत सामान्य नहीं सुना, हाँ, और तिर्यक प्रचय को विस्तार सामान्य है ना उसके, हाँ। देखिए ना, लंबाई चौड़ाई की तो बात हमने देखी थी, यानी जब जब कार्य होता है तब तब ये तो पांचों समवाय स्वयं में ही आ मिलते हैं। हम जरा आगे के पेज पर देखें, 114 पृष्ठ पर चौथी लाइन, इस प्रकार स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य, इन पांच प्रकार के कारणों का अर्थात पांच समवायों का स्वरूप हमने देखा। जब जब कार्य होता है तब तब ये पांचों ही कारण होते ही है, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। क्या कहा, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता, और कार्य कैसा होता है, जैसा कारण है वैसा कार्य होता है। इसके लिए हमने एक वाक्य देखा था, कारणान्य विधायिनी कार्याणि, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा, जैसा स्वभाव, जैसा पुरुषार्थ, जैसी काल लब्धि, जैसा भवितव्य और जैसा निमित्त, वैसा ही कार्य होता है। कार्य निश्चित है तो उसी के अनुसार ये सारे भी कारण भी विद्यमान होंगे। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, प्रश्नों को तो अभी देखेंगे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। देखो क्या पढ़ना है, ये तो दोपहर की बात है ना अपनी, भाई साहब का ऐसा कहना है, दो लाइन पढ़कर सुनाओ।
हाँ,
किधर है, औदारिक शरीर होने से केवली को कवलाहारी होना चाहिए, भगवान का शरीर औदारिक नहीं होता अपितु परम औदारिक होता है। दोपहर में ऐसा प्रश्न निकला था, उसका उत्तर यहाँ नहीं है, आगे है, सात धातु होते कि नहीं होते, ये प्रश्न था, दोषों का विनाश हो जाने से शुद्ध स्फटिक के सत्रुष सात धातु से रहित तेज मूर्तिमय शरीर हो जाता है, यानी भगवान के सात धातु है कि नहीं, ऐसा प्रश्न वहां चल रहा था। प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति, जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातुर विवर्जितम्। सात धातु से रहित यहाँ कहा है, परंतु जहाँ जन्म के अतिशय बताए हैं वहाँ उनका खून और मांस भी धवल होता है, ऐसा लिखा है, मांस को भी और खून को भी,
वो तो जन्म से ही है,
जन्म से ही है, हाँ,
ये केवल ज्ञान की बात है,
हाँ, परंतु
औदारी तो केवल ज्ञान की बात है, हाँ,
ठीक है,
वो तो बहन तो बता रही है जन्म से ही परम औदारी होता है,
वो तो इसमें ना जन्म के अतिशय में सफेद खून की बात है, देखो अपने इसमें चर्चा, वो दोपहर की चर्चा हम दोपहर में रखेंगे तो अच्छा है, है ना, हाँ, देखो अभी तो हम केवल प्रश्न देखेंगे, इसके उत्तर कल देखेंगे। देखो हमें यदि विशिष्ट कार्य करना हो तो हम इन पांच समवायों को, पांच कारणों के समूह को कहां से ढूंढ निकालेंगे, एक प्रश्न, हमारी काल लब्धि नहीं आई हो तो, दूसरा प्रश्न, न जाने हमारा भवितव्य क्या होगा, तो भवितव्य को कुछ और होगा और हम यहाँ स्वाध्याय करते बैठेंगे तो क्या फायदा, ऐसा लगता है, या यदि हमारा भवितव्य ऐसा ही है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, या हम पुरुषार्थ को करेंगे परंतु यदि निमित्त ही न मिला तो, ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, तो इनकी चर्चा तो हम कल करेंगे, क्योंकि हाँ शाम को,
हाँ पांच समवाय कोई द्रव्य है क्या,
आप ही बताना,
नहीं,
ये पांच समय क्या है? निमित्त जो है अन्य द्रव्य की पर्याय है। पुरुषार्थ क्या है? पर्याय है। अब जो होनहार क्या है? पर्याय है। काल क्या है? काल लब्धि। काल लब्धि क्या है? काल लब्धि क्या है? वो भी उसका स्व समय है ना, वो तो वो भी पर्याय का पर्याय द्रव्य की होती है ना।
द्रव्य है
कौन सा?
क्या
पांच समय को आप द्रव्य कैसे कह सकते हैं? पांच समवाय में चार तो हम त्रिकाली में लेते हैं और जो एक निमित्त है वो परद्रव्य है, परंतु वो परद्रव्य की पर्याय है। पांचों कारण आ मिलते हैं। स्वभाव तो अनादि अनंत पड़ा है और स्वभाव में क्षणिक उपादान भी निश्चित समय पर पड़ा है, बाकी जो है वो पर्याय रूप है उसके। और जो है ना स्व पर क्या है, निमित्त उपादान क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी यहाँ ही रुकना है हमें, बाकी दोपहर की जो चर्चा हो रही थी उसकी बात हम फिर कल दोपहर में उसका विस्तार करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।